शान बात को टालकर वहां से चला गया। कुछ देर में सुयश जी भी निकल गए। छाया अंशिका को लेकर सुभाष जी के कमरे में चली गई। अंशिका उनके पास जाकर बैठ गई और अपनी मीठी मीठी आवाज में बड़े प्यार से बोली, दादू बेबी आई है, बेबी को स्टोरी सुननी है, आप बेबी को स्टोरी सुनाएंगे? उसकी आवाज में ऐसी मोहनी थी कि कोई भी उसके तरफ खिंचा चला आए। सुभाष जी के कानों में जैसे ही उसकी मीठी सी आवाज पड़ी, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही आंखों के सामने उसका प्यारा सा चेहरा आ गया तो उनके लब मुस्कुरा उठे। आ गई हमारी गुड़िया, दादू आपका ही इंतजार कर रहे थे, आज दादू आपको एक स्पेशल कहानी सुनाएंगे। उनकी बात सुनकर अंशिका एक्साइटेड हो गई। नर्स ने उन्हें बिठाया तो अंशिका उनकी गोद में बैठ गई और वो बड़े प्यार से उसे कहानी सुनाने लगे। छाया वहीं बैठी लबों पर मुस्कुराहट सजाए उन्हें देख रही थी। अंशिका इस घर के हर शख्स की जान थी, सबको मुस्कुराने की वजह दे दिया करती थी, खासकर सुभाष जी जो कभी मुस्कुराते नहीं थे, वो उसे देखकर खुश हो जाया करते थे। अर्पिता जी ने छाया को यहाँ अंशिका और सुभाष जी का ध्यान रखने को कहा और खुद निकल गई अपनी दोस्त के घर के लिए। बांद्रा वेस्ट मुंबई। इस एरिया में एक घर था, 3 बेडरूम और 2 फ्लोर का। वो घर ना तो ज़्यादा बड़ा था ना ही ज़्यादा छोटा था और फिलहाल उसे बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, सजावट का काम चल रहा था। एक तरफ हलवाई मिठाइयाँ बनाने में लगे थे। घर के आंगन को पीले और हरे रंग के पर्दों और पीले फूलों से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। सीढ़ियों के दाएं तरफ दीवान से स्टेज जैसा बनाया गया था जिसके ऊपर फूलों से बना झूमर लटक रहा था। फूलों की लड़ियों से सजा वो स्टेज बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके दाएं तरफ ढोलकी वाली ढोलक बजा रही थी, साथ ही हल्दी के गीत गाए जा रहे थे। स्टेज के पर ही दीवान के सामने एक टेबल लगाया हुआ था, उस पर हल्दी में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री बड़े ही सलीके से रखी हुई थी। मेहमान यहाँ से वहाँ काम कर रहे थे। उन्हीं के बीच एक औरत जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वो यहाँ से वहाँ भागते हुए सब काम देख रही थी। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर दाएं तरफ जो कमरा था उसमें इस वक्त एक पीले फ्लोरल प्रिंट के लहंगे चोली को पहने एक लड़की बैठी थी। दूध सा गोरा रंग, उस पर पीला रंग बहुत खिल रहा था। कमर तक लहराते कर्ली सुनहरे बाल, जिनकी कुछ कर्ली लटें उसके गालों पर अटखेलियां दिखा रहे थे। काजल से सनी भूरी भूरी आंखें जिसमें एक अजीब सा खालीपन और उदासी छाई हुई थी। गुलाबी रंग में रंगे पतले पतले गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लब, माथे पर छोटी सी येलो बिंदी, उसके ठीक ऊपर लटकता फूलों का बना मांगटीका, कानों में भी फूलों के बने इयर रिंग्स, उसका पूरा श्रृंगार फूलों से किया गया था और पीले रंग से सजी वो लड़की खुद खिला हुआ सूरजमुखी का फूल लग रही थी। बस चेहरे पर अजीब सा दर्द और उदासी छाई हुई थी। वो भूरी भूरी आंखें कुछ बयां कर रही थी पर उनकी भाषा समझने वाला वहां कोई नहीं था। उसके आसपास कई सारी लड़कियां बैठी हंसी मजाक कर रही थी पर उनके बीच बैठी वो लड़की एकदम खामोश थी, जैसे कुछ सुन ही ना रही हो, या वो वहां होकर भी वहां नहीं थी, बस एकटक जमीन को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद नीचे एक लड़की आई जो ऊपर वाली लड़की की उम्र की ही लग रही थी, मतलब 20-22 की लग रही थी। उन आंटी को देखकर वो उनके तरफ पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी। उसकी आवाज़ सुनकर वो आंटी उसकी तरफ मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुरा दी, नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ आप आ गई, जाइए आरवी के पास जाइए, जब लड़कों वालों के वहां से हल्दी आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे, तब आप उन्हें नीचे ले आइएगा। जी आंटी, मैं उसके पास ही जा रही थी, पर पहले आप बता दीजिए अगर कोई काम हो जो मैं कर सकूं, लड़की ने सौम्य सी मुस्कान के साथ उनसे पूछा तो उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, बहुत प्यारी हैं आप, अगर हमें कोई काम होगा तो हम आपको बता देंगे, अभी तो आप जाकर आरवी को देख लीजिए, वो ढंग से तैयार हुई भी है या नहीं, और आपकी मम्मी कहाँ है, वो नहीं आई? ऐसे कैसे नहीं आएंगे हम, हमारी प्रिय दोस्त की बेटी की शादी का फंक्शन है, हमारे बिना फंक्शन पूरा कहाँ होगा। उनके सवाल करते ही पीछे से आवाज आई तो दोनों ने पीछे देखा तो पीली रेशमी साड़ी पहने और लबों पर मुस्कुराहट सजाए एक औरत उनके तरफ ही बढ़ रही थी। उन्हें देखकर पहले वाली लेडी मतलब अनुपमा जी मुस्कुराई, फिर उनके तरफ पड़ गईं। ये वक्त है तुम्हारे आने का, कहती हो कि हम तुम्हारी प्रिय सखी हो और मेहमानों की तरह आ रही हो, अनुपमा जी ने शिकायती लहजे में कहा तो रजनी जी मतलब रश्मि की मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो, शिकायत तो हमें करनी चाहिए थी, इतनी भी क्या जल्दी थी आरवी को भगाने की जो चट मंगनी में पट ब्याह कर रही हो, कोई तैयारी भी नहीं हो पा रही है, थोड़ा वक्त तो दिया होता। तुम तो जानती हो रजनी, मुझे आरवी के भविष्य की कितनी चिंता रहती है, भगवान की कृपा से एक बड़ा अच्छा परिवार खुद रिश्ता लेकर आया, लड़का भी हीरा है, मुझे घर परिवार सब पसंद आया तो सोचा रिश्ता पक्का कर दूं, उन्होंने जल्दी ही शादी करने को कहा तो कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, यही सोचकर मैंने हाँ बोल दिया। फिर एक ना एक दिन तो शादी करनी ही थी, आरवी को अच्छा घर परिवार मिल जाए तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम तो समझो, आसान नहीं मेरे लिए अकेले सब संभालना, पर आरवी मेरी जिम्मेदारी है, उसे सही घर में भेजना मेरा सपना है, बस इसलिए जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। अनुपमा जी ने अपनी सारी दुविधा उनके सामने रख दी। ठीक इसी वक्त अर्पिता जी ने वहां कदम रखा, उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी, वो जैसे ही चुप हुई अर्पिता जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारी दोस्त है ना तुम्हारे साथ, देखना तुम्हारी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से करवाते हैं हम। उनकी आवाज सुनकर दोनों औरतों ने पीछे मुड़कर देखा। अनुपमा जी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। ये कौन है, पहले कभी इन्हें यहाँ नहीं देखा, रजनी जी ने अर्पिता जी को देखकर सवाल किया। तो अनुपमा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे कॉलेज की दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, शादी के बाद अलग हो गए थे, कल ही मार्केट में फिर से मुलाकात हुई तो हमने उन्हें शादी में बुला लिया, बहुत अमीर हैं ये, हमें लगा नहीं था कि हमारे कहने पर आएगी, पर ये आ गई, ये देखकर हमें खुशी हुई। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, मेरी दोस्त की बेटी की शादी है, अमीर हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त भी तो हूँ तो मुझे तो यहाँ आना ही था। और अब तुम सब चिंता छोड़कर अपनी बेटी की रस्मों को देखो, इस शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी हुई, ऐसे धूमधाम से शादी करवाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, अर्पिता जी ने उनके पास आते हुए मुस्कुराकर कहा। तो दोनों औरतें मुस्कुरा उठी। अर्पिता जी के साथ कुछ नौकर भी आए थे, वो सभी एक तरफ खड़े हो गए। अनुपमा जी ने रजनी जी को अर्पिता जी से मिलवाया, फिर अर्पिता जी ने अनुपमा जी को देखकर मुस्कुराकर कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, पर तुम्हारी बेटी मतलब मेरी बेटी, मैं अपने साथ कुछ नौकरों को लाई हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो वो यहाँ का सब काम संभाल लेंगे, तुम बस उन्हें बता दो क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ये हक दोगी। आरवी तुम्हारी भी बेटी है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, अनुपमा जी की आंखें छलक आई थी उनकी बात सुनकर। अर्पिता जी ने उन्हें गले से लगाकर कहा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरवी की शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। रश्मि, रश्मि की दोस्त जिसकी मम्मी है रजनी जी, वो तब से उनकी बातें सुन रही थी। अब उसने तीनों को देखकर मुस्कुराकर कहा, आप तीनों दोस्त बातें कीजिए, मैं अपनी दोस्त को देखकर आती हूँ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो उस कमरे के बाहर खड़ी थी जिसमें वो उदास लड़की बाकी लड़कियों के साथ बैठी थी। रश्मि की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए बोली, आप सबको नीचे नाचने गाने के लिए बुलाया जा रहा था।
उसके इतना कहते ही सभी लड़कियां वहां से भाग गईं। रश्मि ने पलटकर दरवाजा बंद कर लिया और उस उदास लड़की की तरफ बढ़ गई जो अब भी किसी बेजान पुतले की तरह वहीं बैठी जमीन को देखे जा रही थी। रश्मि उसके सामने आकर खड़ी हो गई, पर उस लड़की ने अपनी नजरें नहीं उठाईं। रश्मि कुछ पल खामोशी से उसके उदास चेहरे को देखती रही। उसकी उदास आंखें देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा, आरवी। जैसे ही उसने नाम पुकारा, आरवी की पलकें झपकी, इसके साथ ही आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं, पर उसने नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रश्मि ने फिर से कहा, आरवी मेरी तरफ देख, क्या अब तू मुझसे भी अपना दर्द अपनी तकलीफ छुपाएगी, बता क्यों नहीं देती मुझे, क्यों कर रही है ये शादी, तू जानती है विहान कैसा है, उससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बता मुझे आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तेरी जो तू सब जानते हुए अपनी जिंदगी नर्क बनाने को तैयार है। तूने कॉलेज में एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज खत्म होते ही तूने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। उसके सवालों को सुनकर आरवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने बेबसी से अपनी आंखें भींच ली, जबान से एक शब्द नहीं निकला। उसको यूं रोता देखा रश्मि ने उसे अपने गले से लगाकर भारी गले से कहा, आरू अभी भी वक्त है, इनकार कर दे इस शादी से, वो इंसान नहीं हैवान है, वो तेरी जिंदगी को नर्क से बदतर बना देगा, मत कर यार अपने साथ ये। इतना कहकर वो खुद भी रो पड़ी। आरवी उसके गले लगे रोती रही। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, उससे अलग हुई और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, अब कुछ नहीं हो सकता रश्मि, सब खत्म हो गया, अब मुझे ये शादी करनी ही होगी, मैं मजबूर हूं, नहीं बता सकती तुझे कुछ भी और ना ही शादी से इनकार कर सकती हूं, जानती हूं वो मुझे हासिल करना चाहता है, मैं उसकी जिद हूं और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब जानकर भी मुझे इस नर्क में कूदना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, फिर माँ भी तो इस शादी से खुश हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती, शादी के बाद तो बस बर्बाद होना ही है, कम से कम कुछ दिन तो मैं अपनी माँ को सुकून से जीने दूं। ये कहते हुए वो बिलख कर रो पड़ी। रश्मि की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों बचपन की दोस्त हैं जिनका रिश्ता बहनों से भी ज्यादा गहरा है। दोनों रो रही थीं कि गेट नॉक हुआ, साथ ही बाहर से आवाज आई, आरवी दीदी को बड़ी माँ ने नीचे बुलाया है, लड़के वालों के यहाँ से हल्दी आ गई है। आरवी ने अपने मुंह को अपनी हथेली से दबा लिया और फफक कर रो पड़ी। रश्मि ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, बस दो मिनट में ला रही हूँ उसे नीचे। उसके बाद सुनकर वो लड़की चली गई। आरवी ने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। वो जाने के लिए मुड़ी तो रश्मि ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। आरवी ने बिना उसे देखे ही कहा, प्लीज रश्मि मुझे जाना ही होगा। उसकी आवाज में बेबसी और मजबूरी छलक रही थी। रश्मि ने भारी गले से कहा, नहीं रोक रही तुझे, इतना जानती हूँ तुझे, अगर तूने इतना बड़ा फैसला लिया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, बस इंतजार करूंगी कि कब तू अपना दर्द मुझसे बांटेगी, और अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, कहूंगी उस भगवान को जिन्होंने हम सबको जन्म दिया है कि अगर वो सच में है और सब देख रहे हैं तो उस राक्षस से तुझे वो बचाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लूंगी, कहते हैं अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अब ये उनकी परीक्षा है कि क्या सच में वो अच्छों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं या वो भी सिर्फ बुरों का साथ देते हैं। मैं तो बस तुझे रोक रही थी, क्योंकि अगर तू ऐसे नीचे गई तो आंटी परेशान हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर आरवी नम आंखों से कंफ्यूज थी उसे देखने लगी। रश्मि ने मेकअप किट उठाया और उसका मेकअप ठीक करते हुए बोली, उनकी खुशी के लिए तेरी उदासी छुपाना जरूरी है। उसकी बात सुनकर आरवी के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। दोनों दोस्त अपने दिल में दर्द को दफन करके नीचे चली गईं। टू बी कंटिन्यूड, आगे की स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में।